और फिर प्रभुपाद जी ने कहा है कि मेरे अनेक अधिकांश शिष्य जो है स्वर्ग में जाएंगे। देखिए प्रभुपाद जी ने कई चीज़ें एक संदर्भ में कहते हैं वो, और वो उसको हमें संदर्भ के बिना वो नहीं देखना है। क्या है कि नहीं तो फिर हम वो एक परिस्थिति में जो चीज़ बताई गई उसको हम यूनिवर्सलाइज कर देंगे, उसको हम एक परम सत्य का स्तर दे देंगे। तो कभी कभी प्रभुपाद जी ऐसी चीज़ें बोला करते थे जो कि रेटोरिकल थी, जो उस परिस्थिति में जोर देने के लिए बता रहे थे। तो हमें संदर्भ ज़रूर देखना है। तो वृंदावन में एक बार हुआ था ऐसे कि भक्त ने प्रभुपाद जी को आके बताया कि जो भक्त है सब पूर्वाचार्य किताब पढ़ रहे हैं, रसिक किताब जो पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी नाराज़ हो गए। प्रभुपाद जी बोले ये ऐसे किताब पढ़ेंगे तो उनका राधा कृष्ण के अंतर लीलाओं की किताब पढ़ेगा तो उनका मन दूषित हो जाएगा, तो नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कहा ऐसे किताबों को इसे दूर रखना चाहिए, ऐसे किताबों को जला दो। तो फिर वो भक्त ने क्या किया, तो प्रभुपाद जी नाराज़ हो गए थे, नाराज़ हुए उन्होंने बोला। तो फिर वो भक्त ने क्या किया, सब भक्त इसके बाद किताबें तो सब लेके आए और वृंदावन मंदिर के बाहर में एक ऐसे होली जैसे अग्नि बना दी और सब वो ग्रंथ उसमें डालने लगे। और दूसरे वक्त आ गए, प्रभुपाद जी ये सब आचार्य की किताब जला रहे हो, क्या बकवास है, क्यों जला रहे हो आपने, मैंने कब कहा प्रभुपाद जी। तो क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी का भाव था। अच्छा प्रभुपाद जी बोले आचार्य के जो ग्रंथ है उनकी तो हमें पूजा करनी है, वो जलाना नहीं है आपको। तो क्या है, जो प्रभुपाद का प्रभुपाद की जो बोलने की पद्धति थी, प्रभुपाद जी जब जब वो प्रभुपाद जब एक पॉइंट बोलते थे तो वो बहुत ज़ोर से बोलते थे वो पॉइंट। तो अभी उसी चीज़ का एक दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है, और प्रभुपाद जी ने दूसरा दृष्टिकोण भी दिया है, पर वो दूसरी जगह पे देते हैं। तो प्रभुपाद जी तो इसीलिए अभी मैं इस्कॉन के शास्त्र के एडवाइजरी काउंसिल का एक मेंबर हूँ। तो हम अभी एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी प्रभुपाद हर्मेन्यूटिक्स, हर्मेन्यूटिक्स मतलब प्रभुपाद जी के वचनों को किस तरह समझा जाए। तो उसमें एक मूल तत्व है कि अगर हम कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने ये कहा था तो हमें उस विषय पे प्रभुपाद जी ने सब कुछ जो कहा है वो देखना चाहिए, सिर्फ एक विधान नहीं देखना चाहिए। एक विधान देखे गए तो हम क्या होगा, हमको लगा यही सत्य है, पर प्रभुपाद जी ने कई जगह पे अलग अलग चीज़ें कही है। तो जो शास्त्र का सिद्धांत होता है, देर इज़ अ इटर्नल मैसेज एंड देर इज़ अ कॉन्टेक्चुअल मैसेज, जो एक स्थायी शाश्वत संदेश है और एक पारिस्थितिक संदेश है। तो वही स्थायी संदेश है, जैसे ऐसे उदाहरण आता है कि चैतन्य महाप्रभु के तीन अलग अलग शिष्य थे, तो तीन अलग अलग भक्त थे, उनको तीनों को अलग अलग उन्होंने उपदेश दिया। एक को बोला कि तुम सन्यासी बन जाओ, दूसरे को बोला कि तुम एक ब्रह्मचारी रहो, विग्रहों की पूजा करो, पुजारी बनो, विग्रहों की पूजा करो। तीसरे को बताया तुम जाके घर जाओ, विवाह करो और परिवार की जिम्मेदारी संभालो। तो तीनों प्रामाणिक भक्त थे, पर तीनों को अलग अलग उपदेश दिया। क्यों, तीनों अलग अलग पद्धति से भगवान की प्रगति कर सकते थे। तो इसलिए अगर ऐसे कोई वचन प्रभुपाद जी ने बोले हैं कि अधिकांश लोग स्वर्ग में जाए, अधिकांश भक्त स्वर्ग में जाएंगे, तो वो हमें संदर्भ अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि शायद भक्त बहुत ढीली पद्धति से भक्ति कर रहे होंगे, गंभीरता से भक्ति नहीं कर रहे होंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर इस तरह से आप भक्ति करोगे तो फिर आप भगवत धाम नहीं प्राप्त होगे। अभी भगवत धाम प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम जरूरत है कि भगवान कृष्णा शुड बिकम आर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, हमारी सबसे शक्तिशाली इच्छा जो है भगवान में जाए। शुद्ध भक्त मतलब भगवान के अलावा कोई और इच्छा ही नहीं है। भले ही हम उस स्तर पे नहीं पहुँचे कि भगवान के अलावा कोई और इच्छा नहीं है, पर कम से कम भगवान के प्रति जो इच्छा है वो बाकी सब चीज़ों से और सुदृढ़ होनी चाहिए। पर अगर वैसे नहीं हो रहा है, अगर हम धीरे धीरे भक्ति करते रहेगा तो क्या होगा, भगवान के प्रति उतना आकर्षण जागृत नहीं होगा, और फिर दूसरी चीज़ों के प्रति आकर्षण होगा, दूसरी चीज़ों का भोग करने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए तो ऐसा जो कोई विधान प्रभुपाद जी ने कहा है तो उसका उद्देश्य है कि हमें भक्ति में तीव्र बनाने के लिए। ऐसे नहीं है कि इसका मतलब है कि सब भक्त वहीं जाएंगे, हर एक भक्त अपनी चेतना के अनुसार अपनी गति प्राप्त करने वाला है।